नमो महाकन्याय कृष्णते महाप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनन्दने गौरवस्तुते नमः आनन्द संवाद काल को समझा महापुरुष उनको आत्मा रूप दिखलाया राधा जी के प्रत्येक अंगों से कृष्ण के अंगों और उनकी गौर कांति से कृष्ण की नील कांति राधा जी के अंगों का स्पर्श कृष्ण के अतिरिक्त और दूसरा नहीं कर सकता। गौरव का नहीं वो राधा में स्पर्श भूपेन्द्र सुख बिना क्यों ना स्पर्श क्यों नहीं स्पर्श कर सकते राधा कृष्ण राम विष्णु कल्कि जितने भी अवतार हैं सब तो वही तत्व वैभव द्वारका इत्यादि सभी उसमें उनके अंगों का स्पर्श क्यों नहीं कर सकते। कारण क्या उनमें जब तक की महाभाव न हो राधा के श्री अंगों में महाभाव और ऐसा ही भाव उनमें रसराज महाभाव न हो जिस दिग्गज में उसका स्पर्श हुआ वो कृष्णचंद्र ने भी वीर ललित नायक वीर ललित नायकत्व किसी भी शिव विग्रह में नहीं है कृष्ण विग्रह के अतिरिक्त। इसलिए राधिका जी को स्पर्श करने के लिए वीर ललितत्व नायक जरूरी इसलिए न पुराण हो सकते हैं न जाकाधीश हो सकते हैं न कोई भी अवतार इसलिए उस महाभाव को छूने के लिए यह भाव जरूरी इसलिए किसी में नहीं है इसलिए वो लोग नहीं छू सकते। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं
रामचंद्र
जी ने संप्रदाय गौरंग नहे गौरंग नहे मोर राधा अंग स्पर्श उपेन्द्र सुख बिना तीनों नहे स्पर्श अंग उसी के लिए टीका में कह रहे हैं व्याख्यान प्राकृत जो सहजिया होती है वो लोग इस प्यार का अर्थ ये लेते हैं कि गौ और कृष्ण ये अलग अलग हैं और गौर ही गौर रूप में ही वो नायक और प्रतिया भाव से उनकी सेवा की जा सकती है ऐसा वो मान इसलिए गौर को नागर और अपने को नागरी मान करके उनकी भावना करते हैं। वस्तुतः वास्तव में उभय उभय माने गौर चंद्र और कृष्ण चंद्र दो है में इसलिए उन्होंने कहा कि मैं गौर नहीं मैं कृष्ण हूं राधा जी के स्पर्श से ही मैं कृष्ण ऐसा गौर दिखता इसलिए दो तो है ही नहीं एक ही तत्व है इसलिए एक ही तत्व माना जाएगा उभयी स्वयं विग्रह रूप विग्रह गौर ही गौरचंद्र कृष्ण स्वरूप में संभोग संभोग रसे नागर या विषय विग्रह गौरचंद्र कृष्ण स्वरूप में अरे ऊपर जाना क्या गौरचंद्र कृष्ण स्वरूप में वो नागर है, गंभीर ललित नायक और विषय विग्रह और कुछ नहीं, और गौर स्वरूप विप्रलम्ब रस में आश्रय विग्रह, आश्रय विग्रह को विषय विग्रह बनाना उचित नहीं। कृष्ण है विषय विग्रह के भोक्ता है, और वही गौर विग्रह में वो विप्रलम्ब रस में आश्रय विग्रह राधा जी हो करके और कृष्ण को आस्वादन कर रही हूं, इसलिए वो विषय विग्रह नहीं हो, भोक्ता नहीं है, हैं भोक्ता किंतु वो भोग्य के रूप में उसमें है, राधा जी के रूप में है, इसलिए करें कृष्ण ही गौर स्वरूप में विप्रलम्ब रस में आश्रय विग्रह राधिका जी की भावकांति में श्री कृष्ण चाहिए। अप्राकृत श्रृंगार रसराज विग्रह, अप्राकृत श्रृंगार रसराज विग्रह, धीर ललित नायक स्वयं नंदन दन के बिना दूसरा कोई विष्णु विग्रह कृष्ण पूर्ण चित शक्ति व स्वरूप शक्ति महाभाव स्वरूप राधिका के भोक्ता नहीं हो सकता, राधिका जी से उनका संपर्क नहीं हो सकता, केवल मात्र किससे होगा, श्रृंगार रसमय विग्रह धीर ललित नायक, ये कृष्ण ही राधा जी को स्पर्श कर सकते क्योंकि उनकी ये पराशक्ति है, ये महाभाव स्वरूप है, इसलिए कृष्ण व्यतीत समस्त विष्णु विग्रह श्रृंगार रस और धीर ललित नायकत्व भाव का अभाव है, नहीं और वे लोग उन लोगों में ऐश्वर्य प्रधान है, द्वारकाधीश तक में जितने भी ग्रहण दोष में ऐश्वर्य प्रधान है, इसलिए इसलिए श्रीमती जी का नाम है चैतन्य चैतामृत में बतलाया गोविंदा नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि, गोविंद को आनंद देने वाली राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद को मोहन करने वाली गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि, इसलिए तार भावे भावित करी आत्मन तबे निज माधुर्य करी आश्रय, राधा जी के भावों से अपनी आत्मा और मन को विभावित करके अपना ही कृष्ण माधुर्य आस्वादन कर, तुम्हार ठाई अमार किछु गुप्त नहीं कर्म दुकाई लपे बोले जानो सबों, यदि मैं इसे छिपा भी दूं तो आप अपने प्रेम के बल से हमारे उन सब चीजों को ये काम करके कहा जिसे गुप्त रखना था, दूसरों को मत कर, अनाधिकारी लोग जो है कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी सहजिया सखी भेदी ज्ञानी मुक्तिवादी ये सब इसके लिए जुड़ते हैं, इसलिए इस विषय को छिपा कर रखना, नहीं तो वो लोग फंसी उड़ाएंगे और पागल समझेंगे हम, इसलिए उनकी दृष्टि में मैं भी पागल हूं, महाप्रभु जी कह रहे हैं तुम भी पागल हो, क्यों ये सब चीज उनके लिए अधिकार से बाहर की है, इसलिए यदि ये कोई प्रसंग भी सुने वो लोग तो इसको पागलपन की बात, इसलिए इन लोगों से कभी भी ये सबका प्रसंग न हो, दस रात्रि रायरमानंद संगे सुखे गमाइला प्रभु कृष्ण कथा, इस प्रकार से दस रात तक महाप्रभु उनसे लगातार इस विषय में वार्तालाप करते रहे, निगुण ब्रजे रस लीला विचार अनेक कही पार ना पाई रहता, ब्रज की जो रस लीलाओं का विचार इसके संबंध में थोड़ा सा स्पष्ट हो गया, ये अपार है और बहुत निगुण, दस रात में ये सब समाप्त हो जाएगा, गाना सुनना नहीं, वो तो प्रारंभ होती, ये कैसे हैं इनको बतलाया, तांबा काशा रूपा सुना रत्न चिंतामणि केहो जदि कहाँ पौता पाए एक खान परमे उठाई ते से हो उत्तम वस्तु पाए ऐसे प्रश्न उत्तर कहिले प्रभु गान का। तामा तामा होता है कांसा और रूपा सुगम में चांदी सोना और रत्न चिंतामणि रत्न ये पांच का नाम दिए। ये इसकी उपमा दे रहे हैं जिस प्रकार से पृथ्वी के अंदर में धातु के रूप में तमा मिलता है। पहले तो चलता है कोयला से, कोयला कोयला के बाद में फिर किरासन तेल, उसी के नीचे पेट्रोल, उसके बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते तांबा कांसा रूपा सोना हीरा, हीरा के बाद में भी बड़े बड़े को कहते हैं मणि, जैसे वो पहले निकला था कोहिनूर हीरा, बड़े बड़े रत्न, और उसके बाद में चिंतामणि। उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति मट्टी को खोदा तो खाने मिलती है तरह तरह की खाने, तो यदि उसको कोई कोयला भी मिलता है तो आजकल बहुत ऐसे ही एक केहो यदि कहां कोता पाए एक खानी, यदि एक को मिलता है दूसरा फिर मिल जाता है तो एक को छोड़ देता है कि दूसरे श्रेष्ठ वस्तु को ले लेता। उसी प्रकार से कमें उठाई जैसे हो उत्तम वस्तु पाए ऐसे प्रश्नोत्तर की गत होगी। इसलिए उन्होंने वर्णाश्रम धर्म में भगवान की आराधना से उठाया। कहां से उठाया? वर्णाश्रम से पहले बतलाया शब्द साधन किसको? वर्णाश्रम धर्म के द्वारा हरि को प्रसन्न करना ही समस्त धर्मों का मूल यही साधन। भगवान की प्रसन्नता हो गया साध्य और साधन हुआ वर्णाश्रम धर्म का। महाप्रभु जी ने कहा यह बात आगे कहा, तो उन्होंने कहा कृष्ण कर्माधम वर्णाश्रम धर्म का पालन करके विष्णु को प्रसन्न करना ये कोयले इत्यादि के उससे तय कृष्ण ने अपने कर्मों का अर्पण कर ये हुआ। महाप्रभु जी ने कहा यह पाद्य तुम कौन कर्म कर अर्पण करने वाला तुम है? कर्म तुम्हारा है, शरीर तुम्हारा है, तुम्हारा तो कुछ नहीं, अतएव इस चीज को छोड़ आगे बढ़। उन्होंने कहा स्वधर्म त्याग, शरीर का मन का जितना धर्म है त्याग करो, यही सबसे साधन। स्वधर्म त्याग मैंने सर्वधर्मान प्रत्यज्यमान एक अंश भगवान के सर्व। महाप्रभु जी ने कहा यो बाध्य, यो बाध्य यही बाध्य। क्यों? अभी तक उनका स्वधर्म था शरीर का धर्म ही हमारा धर्म, माता पिता का पालन, संसार का ये पालन, ये सब जो चीज है ये करना, इनका त्याग करने से कुछ नहीं हो। तब उन्होंने कहा कि ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्य साध ज्ञान। महाप्रभु जी ने कहा कि यह बाध्य ज्ञान मिश्रा मैंने क्या, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म तत्व हूं, शोक नहीं करता और सब समय प्रसन्न रहता, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा लगते कहीं शोक नहीं करता, सब जगह संभाव आपन्न है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो इनमें सब कुछ नहीं, सब समय प्रसन्न रहता ऐसा व्यक्ति कुछ देने के बाद में पड़ा करता ज्ञान। महाप्रभु जी ने यह बात की ज्ञान विश्वास से भी भक्ति मुक्ति से बोले। अंत में उन्होंने कहा ज्ञान शून्य भक्ति महाप्रभु जी ने कहा यो है ज्ञाने प्रयास मुझ पास। उन्होंने कहा जी आगे बढ़िए, है ही हो आगे बढ़ो। ये जो पांच हुआ ज्ञान शून्य भक्ति तर, ये पांच बतलाया पहले क्या कोला उल्टा सुना तांबा। अब फिर इसका दूसरा स्तर और पांच, उसको भी पांच बतलाया। उस पांच स्तर को बतलाएंगे यहां से आरंभ करेंगे। एक तो उसको बतलाएगा शांत दास्य सख्य असल और मध्य, उसको भी छोड़ दीजिए और उसके नीचे भी चले विचार। तो प्रेमा भक्ति के दो स्तर बतलाए, वैधि भक्ति का प्रेम और भाव भक्ति वाला प्रेम, नानोपचार वाला वैधि भक्ति और कृष्ण भक्ति रस भाविता, ये बतलाया रागानुगा भक्ति का। महाप्रभु जी ने कहा यहाँ ये ठीक है आगे करें, तो आगे बढ़े। तो फिर उन्होंने बतलाया दास शांत को रहने दिया, शांत को नहीं बतलाया। शांत को क्यों नहीं बतलाया? उनका रागानुगा भक्ति का लक्ष्य था ब्रज में कृष्ण चंद्र जी की राधा जी की सेवा, इसलिए ब्रज में शांत क्या चीज है? जमुना शरीर, प्रभुपाद जी ये व्याख्या में बतला, जमुना शरीर कुलीन बालुका कदम्ब वृक्ष आदि लताएं, सब वृक्ष और लताएं, गोबेत्र बेशानु बेनु, ये सब शांत रस के विग्रह हैं। और जगह हो सकते हैं किंतु ब्रज में शांत रस का प्रकाश नहीं। यदि संभव तो इन्हीं लोगों को ब्रज में पा सकते हैं, किंतु कहते हैं भक्ति स्वामी सिंधु में ब्रज में शांत रस का प्रकाश नहीं। यदि कोई एकदम है ही नहीं है तो वहां पर अभाव हो जाएगा। इसलिए हैं किंतु उनकी क्रिया को कम देखती है, इसलिए ब्रज में जमुना सलिल, जमुना का पानी, इसको शांत माना जाता है। किंतु है क्या जमुना सलिल माने जमुना जी? वो तो विशाखा है, इसलिए तो कहा नहीं जा सकता। पुनीन बालू का, वहां पर बालू है ना, जमुना का पुलीन इसलिए कहा गया। राधा कृष्ण गोपियों के सहित उसमें प्रवेश करके जल उनीचते हैं, जल उनका अंगों पर स्पर्श करता है। यदि कोई वहां पर व्यक्ति होता ना तो ये सब लीला नहीं होती, लज्जा आती। क्योंकि पानी से क्या लज्जा, वृक्ष से क्या लज्जा, कमल के फूलों से क्या लज्जा, उसको जड़ अचेतन मान करके उनके सामने लीला में कोई संकोच नहीं होता। है तो चिन्ह में जीव चीज वस्तु है, वो कमल भी है, पानी भी है, नदी भी है, उसका तट भी है, ये सब चिन्ह में, वहां के वृक्ष जो है सब चिन्ह में है, जान रहे हैं, अनुभूति है, रस भी आस्वादन कर रहे हैं। किंतु इनसे तीन संकोच लग जाए, उसके लिए अनुकूल हो जाते, अनुकूल होने के नाते उनकी सेवा करते हैं, किंतु वो चल फिर नहीं सकते, इसलिए इनको शांत। किंतु है नहीं, वो जमुना जी स्वयं विशाखा कदम्ब वृक्ष इत्यादि गोपियां से कह रहे हैं, कदम्ब वृक्ष कदम्ब को सखा लेते हैं, कृष्ण को देखते ही आनंद से भर जाते हैं और अपने कृष्ण फल को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो भला इसको हम शांत कैसे कर सकते, कृष्ण के ऊपर में छाया करने लगते हैं। गायें गायों से बदले कृष्ण बन जाए तो ये माता वात्सल्य रस है, साधारण गायों को शांत रस कहेंगे। क्यों? गायें अपने आप जाकर तो कृष्ण को गोदी में नहीं बैठा सकती और अपना दूध नहीं पाल पिला सकती, पालन पोषण नहीं करते, किंतु कृष्ण उनके बछड़े जब बन जाते हैं तब इसलिए इनको भी शांत नहीं कहेंगे। और वेत्र है, वेत्र ये वेत्र जो हाथ में लिया लठिया के उसमें गायों को उधर उधर कर रहे हैं, कृष्ण का ये वेत्र क्या है? मैं तो बलदेव, वेणु क्या है? बलदेव जी है। इसलिए सखा के रूप में सब समय कृष्ण अपनी पेटी में यहाँ वहां सब रखते हैं। वेत्र विशान वेणु चित्र पत्र रक्त ये सब दास, दास होने पर भी ये सख्त भाव दिखता है। कोई कोई बड़े वाले जो हैं ये बासल रस जो गोदी में लेकर के कृष्ण को खिलाते हैं, खिलाते हैं उनको दूध पान कराते हैं, इसलिए वहां पर दास रस भी संकुचित है, शुद्ध वहां पर दास प्लस सख्त मिलकर के वहां पर काम करते। इसलिए ब्रज में, ब्रज में सख्त
और वात्सल्य,
वात्सल्य और मधुर ये तीन की विशेषता है। अब दास्य, दास्य से आरंभ किया, दास्य वे प्रेमा भक्ति एक, ज्ञान सिंह उधर छोड़ दो, तब प्रेमा भक्ति एक, दास्य एक दो, सख्त तीन, वात्सल्य चार और कांत पांच, ये पांच भावों का महाप्रभु जी ने तांबा सोना काशा रूपा सोना और चिंता, इसको चिंता में बतलाया मधुर रस का उसको कांता। इस प्रकार से बतला करके प्रभु कहे साध्यावधि सुनिश्चय, ये तो साध्यावधि तक हुआ, निश्चित रूप में ये साध्य, क्या साध्य हुआ? गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है मधुर रस, यही साध्य। किंतु इन गोपियों में भी किसका प्रेम है साध्य? तब उन्होंने बताया राधा जी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है यही साध्य शिरोमणि, राधा प्रेम साध्य शिरोमणि। ये महाप्रभु जी ने फिर इसके बाद यहाँ तक तो साध्य साधन तक तो हुआ, अब चिंतामणि किसको कहते हैं? चिंता करने से ही सभी कुछ वो दे देती, जो चिंता करो सो ही दे। अब उसका प्रकार कोई निश्चित नहीं है कितना प्रकार, वो अनंत प्रकार का हो। अब उस अनंत प्रकार का विचार करने पर वो विचार किया है कृष्ण का स्वरूप, महाप्रभु जी ने पूछा कि और कुछ कहने लायक है तो कहिए, तो उसने कह रहे कृष्ण का तत्व, राधा जी का तत्व, प्रेम का तत्व, रस का तत्व, ये चार तत्व पूछे। चार तत्वों को उन्होंने विचार करके अलग अलग उनको बताया, कृष्ण तत्व क्या, राधा तत्व क्या, प्रेम और राष्ट्र। महाप्रभु जी ने कहा इससे और कुछ आगे बढ़िए, उन्होंने कहा इससे आगे कुछ बढ़ने का प्रश्न ही नहीं है, कोई आज तक पूछने वाला नहीं, तभी इसका प्रश्न का उत्तर वो दे रहे हैं। एक विलास तत्व के संबंध में, विलास की अत्यंत वैचित्र है, अनंत वैचित्र विलास, एक ही प्रकार का विलास, विशेष रूप से जो लास मानी सुशोभित होता है, उल्लास ज्योति का प्रेम तरह तरह से उसको बना। अब इसी में स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, इसके बाद में अधिरूढ़ रूढ़ अधिरूढ़ मादन मोदन प्रेम वैचित्र और फिर कितने ये सब उसके ये विलास तत्व के अंदर में, अंत में विलास तत्व में बतलाया रसराज महाभाव भूमिका बतलाने के बाद में ये विलास तत्व अभी ठीक से प्रकटित नहीं हुआ, तब उन्होंने देख रहा वह तो दिया पहले ही राग ये विलास तत्व बतलाया, और दोनों में ऐसा हुआ कि उनको भी ज्ञान में मैं कौन हूं ना सो रमणी ना सो रम ये भी बतलाया, ऐसा दोनों को भाव हुआ। अतः तो सत्संविद्ध दशा प्राप्त हो करके से वृत्ति को प्राप्त, जहां तक ये प्रेम बढ़ सकता है वहां तक, ये हुआ महाभाव। और उसके आगे ये सब का ये वर्णन किया विलास, उसी को क्लियर करने के लिए राय रामानंद ने उनसे प्रश्न किया, आप कौन हैं? आपको पहले देखा गौर, पीछे देखा श्याम, और उसके बाद में देखा कंचन कुलिका, आप कौन हैं? हंस करके महाप्रभु जी ने अपना रसराज और महाभाव दोनों एक जगह राधा के प्रत्यक्ष अंगों से कृष्ण का प्रत्यक्ष अंग आली, और उनकी उनके हृदगत जो भाव है राधा जी का महाभाव मादल मोदन का, वो सब इनमें प्रवेश कर दिया राधा, ये भाव और कांति दोनों उनको प्राप्त होकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में गौरव, ये जब दिखलाया एकदम रुचि, ये है गौर तत्व। इसी तत्व को ये राम बतला रहे हैं, गौर तत्व क्या है? कृष्ण ही गौर तत्व और गौर ही ये कृष्ण, एक संभोग रस में कृष्ण बने हुए हैं, विषय विग्रह धीर लगित और रसराज की मूर्ति लेकर के कृष्ण, ये गौर, और कृष्ण ही विप्रलंब रूप में राधा जी के भाव और कांति को लेकर के गौर, इसलिए विप्रलंब रूप में आश्रय है और कृष्ण रूप में विषय,
संभव
यदि आश्रय को हम विषय मान लें वही गड़बड़, इसलिए सहजिया लोग इस चीज को नहीं समझ करके गौ को ही विषय तत्व नागर बना लेते हैं, ये उनका दोष। अब कहते हैं एतो बलि राय पासे विदाय मन, दूसरे दिन महाप्रभु जी ने कहा अब मैं आगे बढ़ना चाहूं, विदाय काले तारे यही अज्ञान, विदाय करते समय में उन्होंने ये आदेश, विषय छाड़िया तुम जाओ मिला करो, विषय छाड़िया तुम जाओ मिला करो, मैंने क्या ये जो विषय है, अर्थात तुम जो गवर्नर यहाँ पर बना हुआ है शासन, और इतने सब विषयों को देखता है, कंट्रोल करता है, राज्य शासन चलाते हैं, अब इसको छोड़ो, कभी वो विषय नहीं थे, रामानंद विषय नहीं, उनका कोई भी चीज विषय नहीं, किंतु एक काम में तो लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ समय तो उनको जाना पड़ता है, आज विषय नहीं होते तो महाप्रभु जी के साथ साथ में सब समय रह सकते, इसलिए काम के समय में दिन में चले जाते हैं राज्य शासन देखने और रात में छिप कर गया, इसलिए वो कह रहे हैं अब तुम विषय को संपूर्ण रूप से त्याग कर दो, यदि संपूर्ण रूप से कृष्ण के इन प्रेम को आस्वादन कर और इन चीजों को समझ लीजिए, तो संपूर्ण एक मिनट का समय इसमें बच अनितीर्थ करी तहा आशिक अल्पकाल, विषय छाड़िया तुम जाओ नीला नीलाचल में तुम पहुंच जाओ, और मैं भी तीर्थ यात्रा करके मैं इधर से घर होकर के और फिर मैं भी पहुंचता हूँ, दो जने नीलाचल है रही पर एक संग, हम नीलाचल में एक ही साथ रहेंगे, सुखे द्वारे गोकाल तथा कृष्ण कथा वहां पर हम लोग एक साथ रह करके कृष्ण की कथा अनुशीलन करें। जब वो महाप्रभु चले गए उधर तो এত বলি রায়ার রামানন্দে করি আলিঙ্গন, তারে ঘরে পাঠাইল ফরি সয়। उन्होंने राय रामानंद को गले से लगा लिया और उनको घर में भी वो अपने राजभवन में चले गए और महाप्रभु स्वयं थोड़ा सा स्वयं करके ब्रह्म मुहूर्त में उत्तर और वहां से प्रातः काल उठी प्रभु देखी हम हनुमान जी का कोई मंदिर वहां पर दर्शन किया, दर्शन करके आगे दक्षिण की तरफ में चले और राय रामानंद उसी दिन ही अपनी पूरी तैयारी करके वहां पर सब समझा बुझा करके और चले गए, धीरे धीरे चले गए वो कटक में और राजा से मिल करके उन्होंने यह आवाज करी कि अब मुझे राज काज नहीं हो, इसलिए आप दूसरे को गवर्नर और वहां का शासक नहीं और मैं अब पूरी में रहूंगा। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि मैं आ रहा हूं, वो आ रहे हैं, आने में भी तो समय लगेगा, उनको संभालने में दिखलाने में समय लगेगा और महाप्रभु वहां से वहां कहां गए हैं सबका इसके बारे में वर्णन, क्या क्या उन्होंने किया इसका भी वर्णन। तब ये वहां से आए, कहां इनको स्थान मिला, इनको जब आकर के ठहरते थे तो इनके लिए राजभवन में राजभवन था जगन्नाथ वाटिका, अभी वो वाटिका में उनका रहने का स्थान अभी भी है, तो वहां पर आकर के ठहरे और वहीं वो ठहर महाप्रभु के लिए प्रतीक्षा कर रहे। महाप्रभु जी जब लौट करके आए तो काशी नाथ काशी अर्थात गंभीरा नहीं हुए, उनको वहां पर स्थान दिया गया। अब ये रहते और ये प्रतिदिन वहां पर पहुंच चुके नारायण, इसी बीच में ब्रह्मानंदपुरी ब्रह्मानंद भारत और नौ संन्यास वहां पर ये संग करके नौ संन्यास जो नौ मूल है वृक्ष प्रेम लता प्रेम रूपी वृक्ष का अंकुर है दो फड़ हुआ नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य और उसकी शिखर माने मूल है ये नौ उनको बतलाया। ये लोग आए उसके बाद में स्वरूप दामोदर जी वहां पर उपस्थित रहे काशी से महाप्रभु के संग सहपाठी थे, वो वहां पर महाप्रभु जब चले गए तो ये भी चले गए। ये कहां गए, चले गए वाराणसी, संस्कृत के उद्भट विद्वान रस शास्त्र के क्या है उन्हें कोई भी तत्व तो उनसे बाकी नहीं, वेदांत दर्शन इत्यादि सबके पालन कर समस्त वैष्णव दर्शनों को भी ब्राह्मण वहां पर संन्यास लेकर के रहने की इच्छा, किंतु उसमें प्रेम नहीं है इसलिए केवल ब्रह्मचारी का वेश वहां से लिया और स्वरूप ब्रह्मचारी ये नाम वहां से लेकर के सुना जो महाप्रभु वहां पर लौट आए बस यहाँ से थे वहां पर। इस तरह से धीरे 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 सभी वेद वहां पर पहुंचने लगे। अब स्वरूप दामोदर और राय रामानंद जी महाप्रभु के मुख्य मिलने वालों में से और एक सुखी माइकी और आगे की ये साढ़े तीन जन उनके इस हालात में सब समय समझ में रहा।
महिला तो आधे के उम्र
आधी के हाथ में कितना पराकाष्ठा का प्रस्थान है महिला होने से ही ये भाव
और उन सखी माना उसका सूर्य सन्नी ईसा सूर्य दिखाए उनको सखी है तुम सखी में ज्यादा होगा
ऐसा नहीं जैसे पुरुष होने से पूरा हो जाएगा ये पूर्व होने से आधा ऐसा नहीं भाव के ऊपर में सामने करता रामानंद से स्वरूप दामोदर से जैसे खुल करके बातचीत कर सकते इसे नहीं कर
सकते भी करते थे
उनके सामने बातचीत होती थी वो बतलाते थे सब किंतु जहां पर प्रगाढ़ भाव है ये सब दिन में ना कर सकते रात के समय में बूढ़ी होने पर भी बूढ़ी थी 84-85 वर्ष किंतु तो अपने घर आती थी और निगुण जो वैसे सब प्रेम विलास विलास नहीं हुआ वो कहना संभव नहीं किंतु इंगित में सब समझ जाती थी। इस तरह से फिर महाप्रभु जी आए, मिलन हुआ और सब ये सब बात हुआ। पहले महाप्रभु जी पहले वर्ष में तो वो गुंडीचा मार्जन और मंदिर जगन्नाथ जी का, इस तरह से हो सकता है कि और 5-7 वर्ष तक ये सब लीलाएं की। किंतु धीरे 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 महाप्रभु का भाव अंतरंग होता गया और गंभीर गीता में ही एकमात्र उनका दिन। फिर वो रथ यात्रा तो प्रतिवर्ष होती थी, अब उसमें जाने लायक ही नहीं रहे अंत समय। पहले कहते थे बजरंग समय नाम संकीर्तन और अंतरंग समय
रस
आस्वादन। धीरे 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 वो बढ़ता गया, ये कमता गया। फिर महाप्रभु 24 घंटा आवेश में रहने लगे, फिर कौन अब यहाँ पर कीर्तन में सुनेंगे। इस तरह से इनके ये नित्य तक अंत तक इनके संगी ये बने रहे। महाप्रभु का प्रकट होने के बाद में स्वर्ग दामोदर जी, गदाधर जी, राय रामानंद जी सभी प्रकट हुए। विद्यापुर विद्यापुर नाम और रोग वैसे यहाँ पर जहाँ पर भी उनकी वार्तालाप हुई थी, ये गोदावरी का गोदावरी के उस तट पर, इस तरफ में राजमहेंद्री है और उस तरफ में वो दोनों को मिलाकर के ही विद्यापुर कहते हैं।
विद्यानगर
वहीं पर वो राजा रहता था जो कि
पुरुषोत्तम
जानकी जहाँ पर शादी हुई थी। विद्यापुर नाना मत लोग वैसे वहां पर बहुत लोगों की वास था। प्रभु दर्शन वैष्णव भैया छाड़ी निज मत अपने अपने मतों को छोड़ करके महाप्रभु के मत से भगवान नाम पर वैष्णव मत। रामानंद भैया प्रभु विरह में विफल, रामानंद महाप्रभु विरह में विफल हो गए, प्रभु ध्यान रहे सतत विषय सब विषयों को छाड़ दिया, गवर्नरी पद भी छोड़ दिया। दिन रात महाप्रभु जी के ध्यान में उनसे जो बातें हुई इस तरह से सब समय विरह में व्याकुल हो संक्षेपे कह दो रामानंद विज्ञत विस्तारित वर्णित नारे स्वस्थ करो। मैंने ये संक्षेप में वर्णन, इस वर्णन में भक्ति या सामिक सिंधु उज्जवल निर्मणि विगत माधव ललित माधव बृहद भगवतांधु वो अलंकार वस्तु रूप गोस्वामी का गोविंद लीला उनका उसमें का भी इसमें आया और जितने हमारे रस शास्त्र और जितने भी ग्रंथ हैं सिद्धांत ग्रंथ है भागवत के वो क्या सनातन गोस्वामी के हमको आला
वैष्णव दर्शन में
रसायन वो सब इसमें उन्होंने ला करते थे। अब इसकी व्याख्या करने पर एक करने चलता हूँ जैसा अलग से भूजे इसके पढ़ने से क्या होगा करें सहजे चैतन्य चरित्र धनदुग्धपुर माने दूध इसको खाना कर दो मीठा और तो ये चैतन्य महाप्रभु का चरित्र है घने दूध के और उसमें राय रामानंद चरित्र तय खंड प्रचुर खाण होता है, चीनी तो होती है किंतु खाण अधिक उपकारी होता है और उसके साथ में मिल जाता है, इसलिए ये खांड
तो गुड़ से ही तो खांड बनता है, तो
लालता है किंतु उसको पवित्र मानते हैं, चीनी को पवित्र नहीं मानते क्योंकि उसमें हाड़ और क्या क्या चीजें देकर के सेवन इत्यादि देकर के चीनी साफ कर देते, इसलिए खांड को पवित्र
जो बनाते हैं उनके सारे पसीने उसी में गिरते
हैं। तो खांड उसमें मिला दो मीठा और राधा कृष्ण उसमें कर्पूर के समान सुगंधी और रस में उसको इसलिए मात्र चैतन्य चरितामृत चैतन्य महापुरुष का चरित्र ऐसे ही सुंदर है और उसमें राधा कृष्ण का चरित्र उसमें मिला हुआ है। कहीं भी महाप्रभु जी का चरित्र ले लो, जहां भी दक्षिण देश में भी जाएंगे, किंतु उसमें राधा कृष्ण का चरित्र जरूर मिला। अभी रामानंद का चरित्र उसमें राधा कृष्ण का मधुर लीला था, सब कुछ। ऐसे रथ यात्रा का प्रसंग है उसमें दिया, रूप गोस्वामी के साथ में वर्णन किया उसमें, सनातन गोस्वामी का चरित्र वर्णन किया उसमें भी राधा राधा कृष्ण लीला है। परंतु अभिनव भाग्यवान जय से ही करे आस्कार, जैसे चैतन्य महाप्रभु गंभीरा का लीला, महाप्रभु चिंतन करते 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 समुद्र में कूद पड़े और समुद्र में कूद पड़े तो एक मछुए ने जाल में उनको मछली समझ करके पकड़ करके किनारे में लाए और लाया तो उनका लुंज मुंज शरीर जो था बहुत लंबा हो गया है, संधियां सब छूट गई और गोल बटोल हो गए। अब उसको देख करके उसको भूत का भ्रम हुआ, सचमुच में उसको भूत की पाई लग गई और वो भूत भूत कहता वहां से भागा पागल सा होकर। अब इधर में रात भर खोजते खोजते तंग थे, जब उसको आते हुए देखा कहा जी भूत भूत कहां तुमने भूत देखा, चलो हम नहीं चलेंगे, दिखलाने में भी उसको डर। उन्होंने सोचा जी हो सकता है कि महाप्रभु जी को समुद्र में कूद गए हो और दिया हो और उसी को भूत समझ रहा है। हनुमान की आई लोग राय रामानंद जी
सर्वरूप
दामोदर और सब लोग, उस समय में उन्होंने कहा जाकर तुम्हारे हम भूत बिहार दे, ये कह करके स्वरूप दामोदर में उसे मंत्र कुछ पढ़ा क्या हुआ, वे थप्पड़ जो उससे थप्पड़ मारने से उसको होश आ, होश आने के साथ ही साथ में कहा जी अब चलो हमारे हमको दिखलाओ, दूर से दिखला दे। तो वो लेकर के अपने जाल से बहुत दूर से दिखलाया कि वहां पर हमने उसको पकड़ा था, वहीं पर ये लोग दिखा नहीं सकते। अच्छा ये भाव कैसे हुआ, ये तो महाप्रभु जी का जो अष्ट सात्विक विकार की अंतिम दशा उसमें मृत्यु दशा ये क्यों हुई। कृष्ण गोपियों को छोड़ करके ब्रज से मथुरा, महाप्रभु उसकी चिंता कर रहे हैं। अब वो चिंता करते 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 रास वाली जितनी बातें थी ना उनका संलाप, निर्जन में जो संलाप, उनकी मधुर बोली है, टेढ़ी चलन है, टेढ़ी उनका देखना है और उनके विलास इत्यादि का अनुभव करते 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 वो स्मरण पद में एकदम गिरह में अधीर हो गए। राधा जी का भाव उनके अंदर में पहुंच गया और महाप्रभु उसी भाव में वो चले गए हैं, नहीं छोड़कर गिरह में इतने आकुल हो गए कृष्ण के गिरह में जो उनकी दशा है। उन्होंने जब समुद्र को देखा कालिंदी जैसा, बस उसी में कृष्ण ही समझे और वहां पर उनकी लहरों में थपेड़े खाते 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 वो जाल में आए, बहते बहते उधर चक्र तीर्थ में चले गए। अब महाप्रभु जी का यह भाव हुआ किस लिए हुआ, इस भावना के द्वारा तो क्यों होगा, इसलिए उसने कृष्ण लीला रथ में जा रहा है वो, उसमें महाप्रभु जी क्या देख रहे हैं, ललिता विशाखा चित्रा और श्रीमती राधिका जी चली गई हैं वहां कुरुक्षेत्र में और वहां से कृष्ण को ला, अब वहां पर जितने भाव वो सब भाव में आ गया से ही तो पारायण पाई। इसलिए महाप्रभु की जितनी भी लीलाएं हैं महाप्रभु जी की लीलाओं के साथ में कृष्ण और राधा जी का लीला का अपने आप उसमें, इसलिए भगवान से जय से ही करे आस्वाद, भगवान लोग ही इसका आस्वादन दूसरों को नहीं जाएगा, आलस आएगा, सुनने में मन नहीं, सुन तो लिया बस वहीं पर खुल जाए बतलाने शब्द में पूछूं, अच्छा कल हमने क्या बतलाया, अभी क्या बतलाया, बतलाने धारण करने की क्षमता, समझ में नहीं है ये सब धारण करने के लिए क्या चीज चाहिए, परम से वैसा साधन चाहिए, ऐसा श्रवण चाहिए, होते होते धीरे 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 इन अवस्थाओं को पार करना पड़ेगा, वर्णाश्रम का धर्म, उसका फल त्याग, फिर सर्वधर्म पर त्याग, ज्ञान निष्ठा भक्ति, और इसके बाद में
ज्ञान
शून्य प्रेम भक्ति होगी, तब इसके बाद में कुछ कुछ समझेगा, और ये सब चीजें होने के बाद में कुछ कुछ उपलब्धि करेगा, क्रमशः निष्ठा रुचि आसक्ति और भाव जब कुछ आने को होगा तब इन चीजों को कुछ तोते की तरह रटने से भी नहीं होगा, उसमें आनंद नहीं आएगा, कुछ समझ लोगे, इसलिए वैसा भाव होगा, तब ये कैसे होगा, इसी को बृहद भगवतम मुझे हम लोग इनको आस्वादन करने योग्य नहीं है, तब कैसे होगा, जो जो कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हैं, जहां हुई है वात्सल्य रस की लीला हुई है गोकुल में, श्रृंगार रस की लीला हुई वृंदावन में, राधा कुंड में, गोवर्धन के निकट, जावट में, साकेत में, प्रेम सरोवर में, बरसाने में, ये सब लीला, ये सबसे अधिक हुई है राधा कुंड, वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति जाए साथ, जैसे रूप सनातनी ने स्थानों को आश्रय दिया और वहां रहकर के उस भूमि में इसलिए रहते थे, साधन भजन तो हमारा नहीं, ये भूमि यदि कृपा करके हमको स्पर्श करके यदि हृदय में पूजित करा देंगे हमको, इसलिए रूप सनातन इत्यादि जितने गोस्वामी लोग हैं उन स्थानों में रहे और कुछ कुछ साधन भजन भी किया, और इसलिए चिंता, यहाँ की भूमि कैसी है, भूमि चिंतामणि है, भूमि चिंतामणि, इसलिए वो चिंतामणि है, वो अनुग्रह करके यदि अपना संपर्क दे दे, स्पर्श कर दे हमें, तो लीलाएं सब हमारे तब हम कुछ अंत। दूसरी बात, यदि ऐसे वैष्णव का संग हो जाए जो इन कथाओं में सब समय डूबे रहते हैं और उनकी कृपा हो जाए तो इन लीला कथाओं को हम, रामानंद है, रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, कृष्णदास कपिलास गोस्वामी इत्यादि है, रघुनाथ है, ऐसे लोग इनकी परंपरा में आने वाले जो महापुरुष लोग हैं, हम लोग के गुरु पाद पद्म पर ऐसे यदि कोई रसिक है वो स्पर्श करके कृपा कर दे तो वो लीलाएं आगे, इसलिए कहते हैं कि भाग्यवान जेई से ही पर आश्रम, ये लोग साधन भजन अंत में कर करके इस भूमि की कृपा से उस लीला कथा के श्रवण से ऐसा, इसके लिए जोग माया है, गिरिराज गोवर्धन है, जमुना जी है, राधा कुंड श्याम कुंड है, कुसुम सरोवर है, मानसी गंगा है, दान घाटी है, और सब जो लीला क्षेत्रों का बने वहां पर यदि कोई आराधना करे सब विषयों को छोड़ करके, तो सबसे अधिक रसिक वैष्णव का संग ही, फिर कहते हैं यहां जे यहां एक बार पिए कर्ण द्वारे, अभी जो वर्णन किया गया राय रामानंद जी का चरित्र महापुरुष के साथ, ये अपने कर्ण के द्वारे जो एक बार भी पिए, कैसे पिएगा, मुख के द्वारा नहीं, कान के द्वारा, कहीं आंख से पिए, कहीं कान से पिए, कहीं मुख से पिए, कान के द्वारा पीने का, आंख के द्वारा पीने का, कहीं है
पीवी पीवी नेत्र भरी,
कान वो है, और श्रीमद् भागवत नेत्र का फल वही है, प्रजेश सुखोय अनुदेन उत्तम जे परिप्रीतम अनुरात्व कटाक्षम। वहां पर तिनका आंख
नीति
और यहाँ पर है एक बार कान के द्वारा इन कथाओं का यदि कोई पान करे, पान कैसे होगा, एक सुनना है और एक पान करना है। महाप्रसाद कैसे ग्रहण किया जाता है, महाप्रसाद की सेवा होती है, खाने से नहीं होगा, खाने से नहीं, उसे पीने, पीना माने क्या, श्रद्धा पूर्वक काय मनो वाक्य के द्वारा ही नहीं आत्मा के द्वारा भी इसका श्रवण करें। पीतम पिए कर्ण के द्वारे, जैसे कि वो श्लोक है
कर्ण कृते संबोधन
तस्मिन महान
चरित्र
पीयूष अशेष सरिता ऐसा पियो एकदम भीतर में, ऐसा गाढ़ रूप में कैसे पिएगा, अनर्थ रहते तो होगा नहीं, इसलिए अनर्थ सुनने तो किंतु श्रद्धा होना चाहिए। कैसे, इसी के लिए कहते हैं चैतन्य तो रस तत्व ज्ञान है यह श्रवण। यदि कोई पान करेगा तो रस तत्व का ज्ञान होगा, भक्ति का यही चरम उद्देश्य रस तत्व का ज्ञान। रस तत्व ज्ञान होगा कैसे, कृष्ण और राधा तत्व जानना पड़ेगा, फिर भक्ति तत्व जानना पड़ेगा, जानते तब फिर वो रस तत्व इसे ज्ञान होगा। प्रेमा भक्ति है राधा कृष्ण चरण, राधा कृष्ण के चरण में प्रेमा भक्ति है उसके श्रवण से, किंतु कैसे होगा, कान से कैसे सुनेंगे उसके लिए बतला रहे उनका। चैतन्य गुह तत्व जानी यहाँ बैठे विश्वास करी सुनो तर्क ना करी हल्कित, विश्वास करके सुनो। विश्वास मैंने यहाँ क्या हुआ, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुनने करें कि कृष्ण विश्वास किसको कहेंगे, विश्वास के साथ में सुनना मैंने कृष्ण भक्ति के करने से, इसके सुनने से कृष्ण की भक्ति हमको होगी, चाहे समस्त विश्व पलट जाए भक्ति। इस विश्वास के तीन चरण, गुरु के कथनों में विश्वास, शास्त्र के कथन में विश्वास और भगवत वचनों में विश्वास, तीन होगा, तीनों के परिया अज्ञ इसके द्वारा निश्चित रूप में होगा। सुनने का तात्पर्य है कार्य में परिणत करना, सुन रहे हैं कार्य में परिणत नहीं करते हैं तो कैसे होगा, कार्य में परिणत कैसा होगा। मैंने सुना जो श्रद्धा किसको कहते हैं, कृष्ण की भक्ति करने से हमारा सब कुछ, जीवन का सब कुछ करना हो गया है, ऐसे दृढ़ विश्वास का नाम हो तो गया। अब ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, गुरु जी ने कहा, शास्त्रों ने कहा, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने समस्त कार्यों से निवृत्त होकर मंगल आरती दर्शन करना, संध्या अन्य वंदना विधिवत करना, हरिनाम संकीर्तन 1,00,000 करना, वैष्णव और गुरु की सेवा करना, गुरु से उठने से पहले उठो, गुरु के शयन के बाद में उनकी सेवा का सब कार्य समाप्त करके उनसे प्रश्न करो, उत्तर करो, उत्तर सुनो। ऐसा करने से तो फिर होगा मठवास इत्यादि, सुन को लिया करते हैं मनमानी, साधन भजन तो ये हुआ नहीं, गृह छोड़ना ही सब कुछ नहीं, लाल कपड़े इत्यादि ग्रहण करना या तिलक कंठी धारण करना ही अधिक नहीं, अधिक क्या चीज, उसका साधन कर, साधन नहीं किया मनमानी किया तो नहीं होगा, इसलिए साधन। कठोर साधन, नत्थ निवृत्ति ऐसे नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हम आकर के हमारे अनर्थ निवृत्ति के बदले अनर्थ वृद्धि हो, इसलिए अनर्थ निवृत्ति के लिए चेष्टा करते हुए देखने कि आप हमारी रुचि आ रही है कि नहीं, कैसे आएगी, पुनः पुनः अनुशीलन से रुचि आएगी, फिर आसक्ति आएगी। देखो विचार करके कि हमारे अंदर में ये रुचि और आसक्ति आ रही है, हमारे अंदर में अनर्थ है कि नहीं, विषयों को देख करके चित्त ललच जाता है कि नहीं, आलस्य भी एक वैसा ही, इसलिए ये सब कुछ छोड़ करके धीरे धीरे हम पहले ये विश्वास विश्वास पाइए। अलौक लीला यही परम निगूढ़, ये लीला परम निगूढ़ है, विश्वास पाइए। जैसे पहले ही रात नयन भंग भेल, ना सो रमणी ना सो रम, इसमें दूति हमने खोजा नहीं, केवल आंखों से ही वो प्रेम प्रतिपल बढ़ता गया। कैसे बढ़ा, और उनका प्रत्येक अंगों का प्रत्येक अंगों से मिलना है, ये कैसा विलास है, ये कैसे समझ में है? तर्क के द्वारा भाई ये सब चीजें समझ में नहीं आई। हम लोग के पास में क्या चीज है, एक तो शरीर है, दूसरा है मन, तीसरा है बुद्धि, चौथा है अहंकार। इन्हीं से जब हम कुछ विचार करते हैं बुद्धि इत्यादि के, अभी भी हम लोग इन सब चीजों को जो सुन रहे हैं मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा विवेचना करते हैं, अहंकार के द्वारा इसमें प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, किंतु भाई ये सब शास्त्र के लिए। यदि विशुद्ध मन हो गया विषयों से तो कुछ कुछ झलक वो पा सकता, किंतु इससे काम नहीं होगा। इसके लिए विशुद्ध आत्मा का प्रकाश होना चाहिए, सेवक भाव भाव जो है वो आना चाहिए। इसी के लिए कह रहे हैं अलौक लीला एक परम निगूर व्यतीत भावना वर्तमान जब चमत्कार भाव हृदय सत्य उज्जले बाढ़, सत्य उज्जल विशुद्ध सत्य ऊपर से ही आएगा, तब तो उसको हम समझ सकेंगे, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। वो भाव कब, इसलिए विश्वास पाइए। तर्क बहुत दूर, तर्क के द्वारा नहीं होगा, क्यों भाई लिखा है नैषा तर्के नुज्ञानाय भाई, ये तर्क के द्वारा ये हजार करो, मन के द्वारा करो, मन की वृत्ति का ये प्रश्न। यदि गुरुजनों की बातें सुन करके अपने मन में धारण करो और मन कुछ शुद्ध हुआ, उस मन से कुछ अभिज्ञता हो, ये बात तो ठीक है, किंतु अपना जो मन है उस मन से और नीचे की तरफ नहीं चलो। इसलिए इन लीलाओं के लिए यदि अपने मन से गोविंद लीला पढ़ो, कृष्ण भावनामृत पढ़ो, तो मन कहां ले जाएगा, विषयों में लेकर के डुबा करके नरक में। और इसको श्रद्धा पूर्वक गुरुजनों का मन अपने अंदर में लेकर के, उन भावनाओं को अपने में लेकर के, धीरे धीरे अपने आत्मा को उस रूप में बनाओ जबकि वो शुद्ध सत्व प्रकाश पा जाए, तब उसके द्वारा इसका कुछ कुछ अनुभव वो ठीक। इसलिए अपने प्रयास से मत करो, नहीं तो मरने की संभावना। जब वो कृपा करके अपने को वो जना देंगे तभी हम जानेंगे। कैसे होगा वो, इसके लिए अपने मन पर भरोसा ना करके, मन के द्वारा कसरत न करके, कसरत करो इस बात के लिए, किसके लिए, श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत चरण जहां सर्वस्व तारे मिले एक फल, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य राय रमन स्वरूप दामोदर गोस्वामी इनके चरणों का ही आश्रय लिया, दिन रात इन्हीं के चरणों में अपने को समर्पित करके इन्हीं की भावनाओं का चिंतन करते हैं, तो उनकी कृपा से वो चीज अन्यथा अपने इन प्रयासों से अनाधिकारी होकर के करेंगे तुम मरेंगे। राय आनंद राय मोर कोटि नमस्कार। राय आनंद मोदी को कोटि कोटि जार मुख कैले प्रभु रस महाप्रभु जी ने रस का विस्तार किया। दामोदर स्वरूप कड़चा अनुसार मैंने अपने नहीं किया, मैंने तो महाप्रभु जी को स्वरूपतः उसी में नहीं देखा, पीछे से नित्यानंद प्रभु की कृपा से हमने वृंदावन का दर्शन किया। कह रहे हैं जो मैं मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे दांत हाल रहे हैं, पील रहे हैं, संधियां हड्डियां सब जर्जरित हो गई हैं, मैं अत्यंत वृद्ध जठा आतुर वृद्धातुर हो गया, जरा फिर भी लोग मुझसे कहा अनुरोध किया, मैंने उनको अपने चित्त में धार दिया। तब मदन मोहन लिखाए मोरे
हाथे धोरी लिखाए मोर मदन मोहन लिखा
डिक्टेशन कौन दे रहा गोविंद और भावना किसकी लिखा रहे हैं। तीनों ने हमें दर्शन दिए, पहले नित्यानंद प्रभु जी ने कृपा की, फिर गौरचंद्र जी की कृपा हुई, फिर वृंदावन जी की कृपा हुई, धाम ने दर्शन, फिर गोविंद गोपीनाथ जी की कृपा हुई, तब फिर उन लोग वो तीनों भी करते हैं तो ये कैसे दिखाया उसके लिए ठीक कर रहे हैं। हरा रामानंद जी और महाप्रभु के बीच में ये जो बातें हुई उसको सर्व दामोदर ने अपने श्लोकों में निबद्ध कर, जब जब जो लीला होती वो लिख ली, जैसे जगदानंद जी ने कहा है प्रेम विवर्त, प्रेम विवर्त बहुत ही सुंदर ग्रंथ, जखन जहां मोने पड़े तखन तहां दीखी, कह रहे हैं ना जखन जहां मोने पड़े, महाप्रभु साथ में रगड़ झगड़ ये सब हो रहा है और उनकी प्रेममय लीलाएं बाल्यकाल से लेकर के अंतिम तक जब जब मन में पड़ती है यार वीरह रस में पक करके रोने लगते हैं, जब फिर शांत हो जाते हैं उनकी चीजें को वो छंद में, ऐसे स्वरूप दामोदर जी लिख रहे हैं। वहां पर तो स्वरूप दामोदर थे नहीं तो कैसे लिखा। राय रामानंद जी से स्वरूप जी की बड़ी मित्रता, राय रामानंद जी और ये मिलते तो ये सब बातें होती, तो राय रामानंद जी ने उनको जैसे की तैसी बातें जो हुई थी सब स्वरूप दामोदर बताया, उन्होंने कर्चे में ये सब। जगन्नाथ जी का रस प्रसंग चला जाए तो जगन्नाथ जी का रस प्रसंग आद्य पांच स्वरूप दामोदर थे ही, आज दिन में सुना घर में गए उन्होंने, इस तरह से ये सब कर्चे बने। कर्चों को रघुनाथ दास गोस्वामी रोज पढ़ते, पढ़ते पढ़ते उनको याद कर लिया सब कर्चा जितना उनका याद करके और उन्होंने लिख लिए, या वही कर्चा उनको मिल गया दिखा हुआ उन्होंने रख लिया और याद भी उनको हो गया, और उसके बाद में उनके अप्रकट होने पर तो सब कुछ छोड़ करके चले आए, किंतु कर्चों को छोड़ सकते हैं, यही तो उनकी संपत्ति, उनको लेकर के चले आए राधा कुंड के, राधा कुंड के तट पर उनका कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भजन स्थल है और वहीं पर चैतन्य चरितामृत को उन्होंने लिखा, वहीं पर बैठकर तो वहीं पर उन्होंने वो सब कर्चों को रघुनाथ दास गोस्वामी से उन्होंने सुना, सुन करके नोट कर लिए, और जब ये ग्रंथ होने लगा तो उन्होंने इस ग्रंथ में कहते हैं कि ये हमारे मन की कल्पना मत समझना, जैसे उपन्यासकार बंकिम चंद्र हमारे प्रेमचंद थे हिंदी में, प्रेमचंद ने लिखा है गोदान मंत्र मंत्र, अरे गोदान लिखा है ना उपन्यास है उसको प्रेमचंद ने लिखा, ऐसे ऐसे बंकिम चंद्र जी ने कितने कितनी कहानियां लिखी हैं, बंगाल में वो उपन्यास सम्राट कहलाते थे, किंतु ये सब कल्पनाएं हैं, कल्पना ये कहते हैं कि हमारी ये चीजें कल्पना नहीं है, वास्तविक सत्य के ऊपर में प्रतिष्ठित, इसका जो श्रमण करेगा उसका निश्चित रूप में कल्याण होगा। रामानंद मिलन लीला करिला प्रचार, श्री रूप रघुनाथ पद जा चैतन्यनाथ चरितामृत कहे। अब संक्षेप में वो कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य स्वरूप दानंद रामानंद इत्यादि जितने हैं उन सब के विचारों को अपने हृदय में रस रूप में कौन यहाँ पर संग्रहित कर रखा, रूप और सनातन। यदि तुमने रूप सनातन के ही चरणों का आश्रय कर दिया है तो राधा कृष्ण महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य गर्भभूमि सबका ये हो गया आश्रय करना। इसलिए कहते हैं रूप रघुनाथ कवि आज चैतन्य चरितम कहे, जिनको और अवनाथ चंद्रों के चरणों में आशा है, उनकी सेवा करने की अभिलाषा है, उनको जानने की अभिलाषा है, तो चैतन्य चरितामृत के माध्यम से उनको सुन, इसके माध्यम से उनकी कृपा मिल सकती है। चैतन्य चरितामृत मत प्रथम रामानंद राय संगो सेवा नाम नमास्तवम पर और इसके बाद में महाप्रभु दक्षिण देश में ध्यान करेंगे, उसमें बहुत सी कुछ चीजें जानने की भी है, उसको भी मैं